आज अगर तेज जेल में है तो तुम्हारी वजह से। अगर तुमने मुझे पहले सब नहीं बताया होता तो आज सिचुएशन कुछ और ही होती, और शायद तब तुम पर, मुझ पर और हमारे रिश्ते पर उसका बहुत बुरा असर होता। मुझे अच्छा लगा कि तुमने मुझ पर विश्वास किया और बातें छुपाकर सिचुएशन को और खराब होने से बचा लिया। कायरव की बात सुनकर इनाया ने उसे देखा और संजीदगी से बोली, मैं तुम्हें पहले ही सब बताना चाहती थी, रात को ही जब मुझे मैसेज आया था। बस मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कहूँ, लेकिन मैं तुमसे इतनी बड़ी बात छुपाना भी नहीं चाहती थी। तेज अच्छा इंसान नहीं था, वो पहले भी मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर चुका था और बदनामी हुई मेरी। इस बार भी उसके इरादे ठीक नहीं थे। उससे अकेले होटल रूम में मिलने जाना, वो भी तुम्हें बिना बताए, इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकती थी। पहले तो मैं अकेली थी तो जो हुआ मेरे साथ हुआ, लेकिन अब तो मैं अकेली नहीं हूँ। हम मैरिड हैं, तुम मेरे हस्बैंड हो, मेरे साथ अब तुम्हारा नाम जुड़ा है, तो मुझसे जुड़ी हर बात का असर तुम पर और तुम्हारी फैमिली पर होगा। मुझे अपनी रेपुटेशन और इमेज का भी ख्याल रखना था। मेरी ज़रा सी गलती तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती थी। फिर तुमने भी तो कहा था कि किसी भी तरह के स्कैंडल से दूर रहूं। तेज वाला मैटर सीरियस था, और तुम मेरे हस्बैंड हो तो मैं तुमसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपाती। गुड, अच्छा लगा मुझे। हस्बैंड और वाइफ के बीच ऐसा ही रिश्ता होना चाहिए। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि हर बात मुझे बताओ। आई नो हर पर्सन की प्राइवेट लाइफ होती है, सबको प्राइवेसी की ज़रूरत है। सब कुछ बताना ना ठीक है और ना पॉसिबल, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम दोनों का रिश्ता इतना स्ट्रांग हो कि ऐसी बातें जिनका असर हम दोनों की लाइफ और हमारे रिश्ते पर हों, हम एक दूसरे से बिना किसी हेजिटेशन और फियर के शेयर कर सकें। एक दूसरे पर इतना ट्रस्ट हो हमें, क्योंकि इसी से रिश्ता स्ट्रांग बनता है। इनाया ने सर हिलाया, क्योंकि वो समझ रही थी कि कायरव का इशारा किस तरफ था। दोनों बात कर ही रहे थे कि कायरव का फ़ोन रिंग हुआ और दोनों का ध्यान उस तरफ चला गया। किसका फ़ोन है? दादी का, कायरव ने स्क्रीन पर दादी नाम देखते हुए जवाब दिया। एक पल को सोच में पड़ गया कि इस वक्त अचानक दादी का कॉल। अब उसे कहीं ना कहीं अंदाज़ा हो गया था कि कॉल क्यों आया होगा। कायरव ने गहरी सांस छोड़ी और कॉल रिसीव करते हुए वहां से जाने लगा, पर इनाया ने उसकी बाँह पकड़कर उसे रोक लिया। कायरव की निगाहें उसके तरफ उठीं। इनाया ने आँखों से कुछ इशारा किया और कायरव के कदम ठहर गए। हेलो दादी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम और इनाया बहू कैसे हो? सब ठीक है बेटा? दादी की आवाज़ में चिंता झलक रही थी। कायरव ने सरसरी नज़र इनाया पर डाली और हल्के से मुस्कुरा दिया। हाँ दादी, हमें क्या होना है, हम दोनों भी बिल्कुल ठीक हैं। आरव बेटा, अपनी दादी से झूठ मत बोल। अभी यश का फ़ोन आया था, तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। बहुत गुस्से में लग रहा था, फ़ोन पर ही चिल्लाने लगा। इनाया बहू के बारे में कुछ कह रहा था और तुम्हें समझाने कहा कि उसे छोड़ दो। ऐसी लड़की से शादी करके हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिला रहे हो। हर जगह बदनामी हो रही है, लोग फ़ोन करके सवाल कर रहे हैं। बताओ मुझे क्या हुआ है, यश इनाया बहू के बारे में ऐसा क्यों कह रहा था? असल में मिस्टर रायचंद एक मीटिंग में थे जब मीडिया में ये खबर आग की तरह फैली और मीटिंग के बीच ही जिक्र छिड़ गया। ब्रेकिंग न्यूज़ थी और वो इस मैटर से पूरी तरह अनजान। बस तभी से वो गुस्से से बौखलाए घूम रहे थे। कायरव को ढूंढते हुए वो सीधे ऑफिस पहुंचे। वो तो उन्हें कायरव नहीं मिला, वरना वही हंगामा होता। और उसके बाद उन्होंने सीधे घर फ़ोन लगाया और अपनी सारी भड़ास दादी पर निकाली। दादी की बात सुनकर कायरव ने अपनी आंखें बंद कर ली। भौं को सहलाते हुए माथे पर कुछ सिलवटें उभरी जो उसकी परेशानी जाहिर कर रही थी। दादी, आप तो डैड की आदत जानती हैं और इनाया से वो पहले ही कितनी नफरत करते हैं। ज़रा सी बात है और ऐसे ही वो इसका इतना बड़ा इशू बना रहे हैं। हुआ क्या है, क्या आप हमें ये बताएंगे? दादी, हुआ कुछ नहीं। इनाया पहले एक जगह काम करती थी, उस कंपनी के सीईओ ने उसके साथ गलत करने की कोशिश की। जब कामयाब नहीं हुआ तो इनाया को बदनाम करने की भी कोशिश की। उस टाइम इनाया ने उसके खिलाफ कंप्लेंट की थी, लेकिन अपने पैसे और पावर के बल पर उसने केस दबा दिया। मैंने और इनाया ने मिलकर बस उसे उसके गुनाहों की सज़ा दिलाने की कोशिश की है और कुछ भी नहीं। इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अभी सिचुएशन थोड़ी ख़राब है, लेकिन अपने पोते पर विश्वास रखिए, मैं सब संभाल लूंगा। कायान ने शॉर्ट में पूरी कहानी, कम से कम जितना जानना दादी के लिए ज़रूरी था, उतनी बातें उन्हें बता दी। इससे मामले की गंभीरता का पता चलता था। दादी भी कुछ परेशान हो गई। अच्छा किया बेटा, गुनाहगार को सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। बस अब आप अपना और बहू का ख्याल रखना और कोशिश करना कुछ दिन यहाँ ना ही आओ। तुम्हारे डैड अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, कुछ दिन में गुस्सा कम हो जाएगा तब आना। अच्छा दादी, हम कुछ दिन यहीं रहेंगे और अपना ख्याल रखेंगे। आप भी ज़्यादा टेंशन मत लेना, वरना तबीयत ख़राब हो जाएगी। अपना ख्याल रखना। बाय बोलकर दोनों तरफ से कॉल कट कर दिया गया। दादी को भी पता चल गया। इनाया ने मायूसी से पूछा। कायरव जो कुछ सोच रहा था उसका ध्यान उसकी तरफ चला गया। पता तो चलना ही था, जब बात मीडिया तक पहुंच गई है तो उनसे कब तक छुपती। लेकिन तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मेरी दादी बहुत समझदार हैं, वो सही और गलत में फ़र्क करना जानती हैं, तुम्हें कभी गलत नहीं समझेंगी। अभी भी उन्होंने मुझे अपना और तुम्हारा ध्यान रखने कहा है। कायरव ने उसके सर को सहलाया। इतने में फिर उसका फ़ोन बजा, कॉल इंस्पेक्टर की थी। कायरव ने उसे वहीं रुकने कहा और खुद कॉल रिसीव करते हुए तेजी से रूम से बाहर निकल गया। रुख सीधे स्टडी रूम की तरफ था। वीडियो की कॉपी करनी थी उसे, फिर प्रूफ सबमिट भी करना था। इनाया दोनों पैर लटकाए बेड पर बैठ गई। चेहरे पर उदासी थी और दिमाग में कुछ बातें घूम रही थी। कायरव, एक सख्त रौबदार गुस्से भरी तेज आवाज विला में गूंजी और वहां की दरो दीवार तक कांप गई। इनाया घबरा कर उठ खड़ी हुई। सारे सर्वेंट्स भी डर गए। कायरव भी चौंका। उसके होंठ हल्के हिले और धीमी सी आवाज बाहर आई, डैड। कायरव तुरंत सब काम छोड़कर बाहर भागा। सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा तो नजर लिविंग रूम में खड़े मिस्टर रायचंद पर पड़ी, जो गुस्से से बौखलाए हुए बार बार उसे आवाज लगा रहे थे। सर्वेंट सब घबराए हुए से कोनों में खड़े थे। कायरव की स्पीड एकदम से कम हो गई। वो आराम से उतरते हुए नीचे आया और उनकी आंखों में आंखें डालते हुए तल्ख लहजे में बोला, क्या हुआ है आपको? क्यों चिल्ला रहे हैं? यहाँ क्यों आए हैं आप? क्या आप जानते नहीं कि ये विला मैंने अपने लिए बनवाया है ताकि यहाँ मैं अकेले और सुकून से रह सकूं? साफ जाहिर था कायरव को उनका यहाँ आना और खासकर यहाँ आकर ऐसे तमाशा करना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। मिस्टर रायचंद, जो पहले ही भड़के हुए थे, एकदम से कायरव पर बरस पड़े। जलती निगाहों से उसे घूरते हुए बोले, सुकून तो तुमने और तुम्हारी बीवी ने मिलकर हमारा छीना हुआ है। आखिर चाहते क्या हो तुम? क्यों हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाने पर तुले हो? जानते भी हो कि अब जो तुमने और तुम्हारी बीवी ने किया है उसके वजह से मीडिया में कैसी कैसी बातें हो रही हैं, हमारे परिवार की कितनी बदनामी हो रही है, इस समाज में हमारा एक रुतबा है। तुमने और तुम्हारी बीवी ने मिलकर हमारी रेपुटेशन खराब कर दी। ये मेरा और मेरी वाइफ का पर्सनल मैटर है। इसका ना तो आपके खानदान की इज्जत और रेपुटेशन पर कोई असर पड़ेगा और ना ही कंपनी को कोई नुकसान होगा। मैं जानता हूँ कि मुझे इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है और मैं सब संभाल लूंगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वही अंदाज, वही तेवर। बाप सामने खड़ा था, पर मजाल हो जो जरा भी घबराया हो। जिस तरह उसने आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, मिस्टर धनराज का खून गुस्से से खौल उठा।
कैसे? तेज को अरेस्ट करवाकर? जानते हो ना वो किसका बेटा है और मीडिया में किस तरह की खबरें फैल रही हैं? मीडिया का क्या है, अभी कुछ कह रही है और कुछ ही देर बाद सब बदल जाएगा। अभी सब वो कह रहे हैं जो तेज ने उन्हें कहने कहा, लेकिन अब मैं सच्चाई सामने लेकर आऊंगा। तेज अरेस्ट हुआ है क्योंकि उसने गुनाह किया है और मैं उसे उसके गुनाहों की सजा जरूर दिलाऊंगा। तुम उस दो कौड़ी की लड़की के लिए मिस्टर धनराज से दुश्मनी करना चाहते हो? कितने पुराने रिश्ते हैं हमारे उनसे? मिस्टर रायचंद गुस्से से चीखे, जिससे सबके साथ साथ इनाया भी सहम गई। टू बी कंटिन्यूड।